जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरभर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिवो गौर हरिवो प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय विश्वपाद परमहंस परिप्रज का आचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमद वायंग सभा चनार्विन भक्ति वेदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास सदि गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय गंगा माई यमुना माई की जय वृंद देवी तुलसी महारानी की जय हरिनाम संकीर्तन की जय समवेत भक्त वृंद की जय ऑल ग्लोरी टू द असेंबली बोर्ड हरे कृष्ण ऑल ग्लोरी टू द असेंबली बोर्ड हरे कृष्ण ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरंग ओम नमो भगवते वासुदेवाया ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम स्कंद 6 अध्याय 5 श्लोक संख्या 37 अध्याय का शीर्षक है प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को श्राप। ऋणै स्त्रीभिः अमुक्तानाम् अमीमांसितकर्मणाम् विगातः श्रेयसः पाप लोकयोरुभयोः कृतः। ऋणै स्त्रीभिः अमुक्तानाम् अमीमांसितकर्मणाम् विगातः श्रेयसः पाप लोकयोरुभयोः कृतः। ऋणै कर्ज से, त्रिभिः तीन, अमुक्तानाम ऐसे पुरुषों का जो मुक्त नहीं है, अमीमांसित विचार न करते हुए, कर्मणाम कर्तव्य पथ, विघातः नष्ट कर देते हैं श्रेयसः सौभाग्य पथ का पाप। हे परम पापी नारद मुनि, लोकयो लोकों का उभय हो दोनों कृतः किया हुआ। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रजापति दक्ष ने कहा, मेरे पुत्र अपने तीन ऋणों से मुक्त भी नहीं हुए थे, उन्होंने ठीक से अपने कर्तव्य पर विचार भी नहीं किया था। हे नारद मुनि, हे साक्षात पाप कर्म, तुमने जगत में उनके सौभाग्य की प्रकृति में बाधा डाली है। और दूसरी बात यह है कि अभी वह संत पुरुषों देवताओं तथा अपने पिता के ऋणी है। तात्पर्य, जो ही ब्राह्मण जन्मता है उस पर तीन ऋण चढ़ जाते हैं, ऋषिगण देवगण तथा पितृगण। संत पुरुषों के ऋण से उक ऋण होने के लिए ब्राह्मण के पुत्र को ब्रह्मचर्य पालन करना आवश्यक है। देव ऋण से उक ऋण होने के लिए कर्म कांड करना तथा पितृ ऋण से उकऋण होने के लिए उससे संतान उत्पन्न करना आवश्यक है। प्रजापति ने तर्क किया है कि यद्यपि मुक्ति के लिए संन्यास आश्रम की संस्तुति की जाती है, किंतु जब तक वह देवताओं संतों तथा अपने पिता के प्रति कर्तव्यों को पूरा नहीं कर लेता, वह मुक्ति नहीं पा सकता। क्योंकि दक्ष के पुत्र इन तीन ऋणों से मुक्त नहीं हो पाए थे, नारद मुनि उन्हें संन्यास जीवन की ओर कैसे ले गए। स्पष्ट है कि प्रजापति दक्ष को शास्त्रों का अंतिम निर्णय ज्ञात न था, जैसा कि श्रीमद् भागवत में 11:5:41 में कहा गया है, देवर्षि भूतात् परिणाम पितृणाम न किं करो नायम ऋणीचराजन सर्वात्मना यह शरणम शरणम गतो मुकुंदम परिहृत कर्तम। हर व्यक्ति देवताओं सामान्य जीवों अपने परिवार पिता आदि का ऋणी होता है, किंतु यदि कोई मुक्ति प्रदाता कृष्ण या मुकुंद की शरण में पूरी तरह चला जाता है, तो यदि वह यज्ञ ना भी करे तो सारे ऋणों से उक्त ऋण हो जाता है। यदि कोई उन भगवान के लिए भौतिक जगत का परित्याग कर देता है जिनके चरण हर एक के आश्रय है, तो वह अपने ऋणों के उऋण हुए बिना ही मुक्त हो जाता है। यह शास्त्र का निर्णय है। नारद मुनि प्रजापति दक्ष के पुत्रों को तुरंत ही इस भौतिक जगत का परित्याग करने तथा भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए उपदेश देने में पूरी तरह से सही थे। दुर्भाग्यवश हर्यशवों तथा सलाशवों के पिता प्रजापति दक्ष नारद मुनि द्वारा की गई महती सेवा को समझ नहीं सके, अतएव दक्ष ने उन्हें पाप साक्षात कर्म तथा साधु असंध पुरुष कहकर संबोधित किया। क्योंकि नारद मुनि महान संत तथा वैष्णव है, अतः उन्होंने प्रजापति दक्ष के ऐसे समस्त आरोपों को सहन कर लिया। उन्होंने प्रजापति के सारे पुत्रों का उद्धार करके उन्हें भगवत धाम वापस जाने में समर्थ बनाकर वैश्य के रूप में अपना कर्तव्य पूरा किया। ओम अज्ञान तिवरंदस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रजापति दक्ष ने कहा, मेरे पुत्र अपने तीन ऋणों से मुक्त भी नहीं हुए थे, उन्होंने ठीक से अपने कर्तव्य पर विचार नहीं किया। हे नारद मुनि, एक साक्षात पाप कर्म तुमने इस जगत में उनके सौभाग्य की प्रकृति में बाधा डाली है, और दूसरी बात यह है कि अभी वह संत पुरुषों देवताओं तथा अपने पिता की ऋणी है, तो यहां पर बताया गया है कि विशेष रूप से ब्राह्मण के लिए बताया गया कि उसके कौन कौन से ऋण होते हैं, और ये बताया गया तीन ऋण चढ़ जाते हैं ब्राह्मण के लिए। तीन ऋण होते हैं, एक तो ऋण होता है ऋषि गणों के प्रति या संतों के प्रति, दूसरा ऋण होता है देवताओं के प्रति, और तीसरा ऋण होता है पितरों के प्रति, पितृगण। तो संत महात्माओं के प्रति जो है ऋण चुकाया जाता है ब्रह्मचर्य का पालन करके, और देव ऋण चुकाया जाता है यज्ञ इत्यादि करके, कर्मकांड के आधार पर यज्ञ किए जाते हैं, देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, और पितृऋण किया जाता है, पितृऋण चुकाया जाता है संतान उत्पन्न करके, संतान जो आगे वंश को बढ़ाएगी। तो इस तरह से ये तीन ऋण चुकाए जाते हैं, जो विशेष रूप से जो ब्राह्मण परिवार में जिन्होंने जन्म लिया है। तो ये सब ऋण से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। जैसे यहां बताया देव ऋषि भूतात्मा ऋणाम पितृणाम न किं करो नायम ऋणी चराजन, ये जो ऋण है हमारा देवताओं के प्रति, देवताओं के प्रति बहुत बड़ा ऋण होता है, क्योंकि ये देवतागण हमें रोशनी प्रदान कर रहे हैं, वायु प्रदान कर रहे हैं, जल प्रदान कर रहे हैं, और भौतिक सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। देवताओं के द्वारा ही संचालन हो रहा है सृष्टि का। ब्रह्मा जी उसमें सबसे उच्च कोटि के देवता है भौतिक जगत में, तो ब्रह्मा जी के इस संचालन में, सृष्टि संचालन में ये सभी देवतागण जो है सहायता करते हैं। वैसे 33 जो है प्रमुख देवता है, और इनके लोकों में सब जो देवतागण उनका सहयोग देते हैं, सब मिला के 33 करोड़ देवी देवता बनते हैं, लेकिन प्रमुख है सिर्फ 33। तो इस प्रकार ये देवी देवतागण जितने भी हैं पूरी सृष्टि में, इस संचालन के कार्य में सहयोग देते हैं ब्रह्मा जी को, और इस तरह से हम सबकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। सूर्य उदय होता है, प्रकाश देता है, हमें गर्मी प्रदान करता है, खासकर शीत ऋतु में तो बहुत आवश्यकता पड़ती है सूर्य की, और इस तरह से फसल के लिए भी बहुत आवश्यक है सूर्य का प्रकाश। इस तरह से सूर्य की कई सूर्य सब कई आवश्यकताएं पूरी करते हैं। आजकल तो बिजली चलाने के लिए सोलार का भी सोलार एनर्जी के द्वारा जो है बिजली चलाया जा रहा है। हमारे इस्कॉन जो उज्जैन का मंदिर है वो पूरा मंदिर सोलार से चल रहा है, वहां बिजली का कोई बिल नहीं आता, यहां पे भी किया जा सकता है। अभी हमने मंदिर में ब्रह्मचारी आश्रम के लिए सोलार जो है सेटअप किया है, जिसमें ब्रह्मचारी आश्रम में गर्म पानी मिल रहा है बिना गीजर के। तो इस तरह से कई प्रकार की सुविधाएं हम ले रहे हैं सृष्टि से, प्रकृति से, लेकिन बदले में दे क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो ये सब कर्जा है, अगर हम लेकर कुछ देंगे नहीं तो हम लोग केवल कर्जा ही कर्जा ले रहे हैं, और कर्जा का भुगतान ना हुआ तो क्या होता जानते हैं इस संसार में? अगर आपने कर्जा लिया है, बैंक से लोन लिया है, और उसको आप चुकाते नहीं है समय पर, बैंक करप्ट हो गए, आप पैसा है नहीं आपके पास अकाउंट में, और आपने कर्जा लेके रखा है 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ है ना। एक सरकार ने एक नया डिपार्टमेंट खोला है, जानते हैं क्या उसका नाम है? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का नाम है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। ये नया डिपार्टमेंट खुला है अभी गवर्नमेंट में, बड़े बड़े फ्रॉड पकड़ने के लिए। लाखों करोड़ रुपया जो है खा गए लोग, नेता अभिनेता राजनीतिज्ञ खा के जो है अपना जेब भर रहे हैं, अकाउंट भर रहे हैं, जो भी है स्विस बैंक में डाल दिया है। एक बहुत ही प्रचलित राजनीतिज्ञ है जिनके पास स्विस बैंक में 20,000 करोड़ है। कितना है? एक पॉलिटिशियन के पास, और लोगों का क्या कहना फिर। ये बहुत प्रचलित है। जो हमारे विपक्ष दल है, जो विरोधी दल है, उनमें से एक है। 20,000 करोड़ उनके पास है स्विस बैंक में, एक पॉलिटिशियन के पास। तो सोच के देखिए कितना पैसा खा रहे हैं लोग। तो इस प्रकार जो है कई प्रकार की व्यवस्था हमें प्राप्त होती है, कई प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन सुविधाओं का दुरुपयोग होता है तो हमें भुगतना पड़ेगा उसके लिए। ये कर्जा चुकाया नहीं जा सकता है। अगर हम ना चुकाएं तो और कोई तरीका नहीं है, इस कर्जे को चुकाना ही होगा। और ये कर्जा जो है ये एक निरंतर कर्जा बना रहता है। क्यों? क्योंकि आप कर्जा लेते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, धर्म देही जन्म देही रूपम देही 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 देही, है ना। जा रहे हैं वैष्णो देवी जा रहे हैं, चंडी माँ की पूजा कर रहे हैं, काली माँ की पूजा कर रहे हैं, कालका देवी जा रहे हैं, कालका माँ की पूजा कर रहे हैं, मांग ही रहे हैं। और क्या, भिखारियों की कमी नहीं है इस देश में, और इन मंदिरों में जाके सब मांग ही रहे हैं। बल्ले में देख के आ रहे हैं कितना कर्जा हम ले रहे हैं देवी देवताओं से, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। देवी देवताओं को भी बड़ा दुख होता होगा। भगवान गीता बता रहे, कामस्ते ते हृदय ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। इन सबके मन इंद्रियां दूषित हो चुकी हैं काम इच्छा से, और इस कारण से जो है कर्जा नहीं चुका पाते। तो इसलिए इसका भुगतान करना होगा, नर्क गामी बनना पड़ता है। अगर ये कर्जा ना चुका जाए तो क्या होगा? फिर यमदूत संभालेंगे, यमदूत जो है फिर हमारी व्यवस्था करेंगे। नर्क लोगों में यातनाएं सहनी पड़ेगी, बहुत कष्ट होगा, वैतरणी नदी में डाला जाएगा, बड़ा भयानक जो है वहां पर दंड मिलेगा, कर्जा ना चुकाने का दंड। हम क्या सोच रहे हैं कि वह कर्जे से बच जाएंगे, हम बैंकरप्ट हो गए, पता भी नहीं चला हम स्विस बैंक में डाल दिया पैसा, और यहां पे कर्जा नहीं दे रहे हम लोग, कर्जा चुका नहीं रहे हैं, किसी ने हमें पकड़ा नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तो हम बच गए, है ना। और हर साल जो है, हर 5 साल में हम वोट भी ले रहे हैं, जीत भी रहे हैं इलेक्शन, हमें किस बात का डर, हमारे पास पावर है, सब कुछ है। लेकिन यमराज जी तो देख रहे हैं ना, यमराज जी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये लोग ले जा रहे हैं कर्जा ले जा रहे हैं और चुका नहीं रहे। तो इसी तरह से देवतागण और पितृगण जो है माता पिता से हम क्या क्या नहीं लेते, बचपन से ले ही रहे हैं, है ना। माता जो है जन्म लेने से पहले ही संतान का ध्यान रखते हैं अपने गर्भ में, जन्म लेने के बाद फिर कितना कुछ लेते हैं। जन्म लेने के बाद तो कर्जा ही शुरू हो जाता है। पहले दिन जिस दिन जन्मदिन मनाया गया, बधाई हो आपका जन्मदिन है, उसी दिन से कर्जा शुरू हो गया। बस ले ही रहे हैं, दे क्या रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, लेते जा रहे हैं, है ना। बच्चे को दवाई चाहिए, कपड़े चाहिए, दूध चाहिए, और उसको रहने की जगह चाहिए, पढ़ने के लिए फिर स्कूल भेजा जाता है, कॉलेज भेजा जाता है, नहीं, और उसके बाद फिर उसकी नौकरी लगती है, और नौकरी में जो पैसे मिलते हैं वो पैसे की आशा करते हैं माता पिता कि इसने इतना पैसा हमने लगाया इसके ऊपर, बचपन से इसको पढ़ाया लिखाया, कॉलेज भेजा, स्कूल भेजा, कॉलेज भेजा, और इसकी शादी कराई, नौकरी लग गई इसकी, अब तो हम आशा कर सकते हैं कि कुछ रिटर्न आएगा इंटरेस्ट के साथ। तो कितना खर्चा किया, तो माता पिता चिंतित हो जाते हैं, इतना खर्चा कर दिया हमने, बच्चा बदले में क्या दे रहा, और बच्चा नालायक निकले अगर वो कमाने वाला ना हो, या लूटपाट करे और चोरी चकारी में लग जाए, बदमाशी करे, तो माता पिता का हाल जो है, माता पिताओं का हाल खराब हो जाता है। اس نے بچے کو اتنا پڑھایا لکھا ہے, اس نے جو ہے ایسا کیا, تو ایسے میں بھی جو ہے نرک جانا پڑتا ہے ماتا پتا کی جب ٹھیک سے سیوا نہیں ہوتی ہے. اور پھر کیا بتا رہے ہیں, تو اس پرکار اور انیہ جیواتماؤں کے پرتی بھی ہمارا کرجا رہتا ہے. جیسے ہم بیٹھے یہاں ویاس آسن میں بیٹھے ہیں, یہ تو بھاگوت کی سیوا کے لیے اپیوگ کیا جا رہا ہے, یہ سدوپیوگ ہے, لیکن بنا کس سے, لکڑی سے. لکڑی کہاں سے ملے گی آپ کو, پیڑ سے, وکشوں سے. وکشوں سے ہم لوگ کتنا کچھ لے رہے ہیں, انیہ جیواتماؤں سے بھی ہم کتنی سیوائیں لیتے ہیں نہیں. وکشوں سے کاغذ بنتا ہے اور اس کاغذ کو کا اپیوگ کرتے ہیں پتریکاؤں کو چھاپنے میں, نیوز پیپر چھاپنے میں. کوڑا کرکٹ چاروں پاپوں کی ویاکھیا ہوتی ہے جس میں, جن اخباروں میں, پتریکاؤں میں, ان سب میں جو ہے کیسے نیم توڑا جائے, کیسے پاپ کیا جائے, اس کے بارے میں وسار سے چرچا کی جاتی ہے. اور وکشوں کا اپیوگ جو ہے اندری ترپڑ کے لیے ہوتا ہے. لکڑی کا اپیوگ کرتے ہیں لوگ, لکڑی جلاتے ہیں اور پھر اس کے بعد سب جو ہے پارٹی بناتے ہیں. ٹھنڈ کے موسم میں کوکرم کرنے کے لیے لکڑی جلائی جاتی ہے, اس کو پکنک کہہ لیجیے, کچھ بھی کہہ لیجیے. پھر یمدوت بھی بنائیں گے پکنک ہمارے ساتھ, ہے نا, وہ بھی آپ کو جو ہے آس پاس جو ہے وہ بھی ناچیں گے اور تڑپائیں گے. یہ ہمارا پکنک ہے, یہ اسپرچل پکنک نہیں ہے, یہ جو ہے نرک والا پکنک ہے. ان کو بھی مزہ آئے گا, وہ اپنا میوزک چلائیں گے. تو اس پرکار بچ نہیں سکتے ہم لوگ اس قرضے سے, اسمبھو ہے. لیکن یہ بتایا گیا ایک طریقہ ہے صرف, کیا, سرواتما یا شرنم شرنم گتو مکندم پریہرت کرتم. اگر بھگوان مکند کی ہم شرن لے لیں, بھگوان کرشن کی شرن لے لیں, تبھی اس قرضے سے بچا جا سکتا ہے. انیتھا قرضے سے بچنے کا کوئی اور اپائے ہے نہیں, کوئی اور چکا نہیں سکتا یہ قرضہ, کوئی اور قرضہ نہیں چکا سکتا. ماتا پتا کے لیے مالی کچھ کیا بھی آپ نے, اور نوکری کر لیا, اچھا پیسہ کما بھی لیا, گھر بار بھی چلا لیا, سب کچھ کر لیا, اور ونش بھی آگے بڑھا لی جیسے یہاں لکھا ہوا ہے نا, یہ سب بھی کر لیا, لیکن پھر آپ کی سنتان بھی آپ سے کچھ آشا کرے گی, مطلب آپ کی سنتان بھی آشا کرے گی, آشا کرے گی مطلب وہ بھی دیکھے گی ہم نے ماتا پتا ہمارے لیے کیا کیا ہے, ہم نے کس پرکار کا وچار آتا ہے, غلط وچار آتا ہے. اور جب آپ کی سنتانیں ہوں گی, یعنی ان بچوں کی سنتانیں ہوں گی جو بڑے ہو گئے, ان کی سنتانیں ہوں گی, تو پھر ان کے پرتی بھی جو ہے ہمارا کچھ کرتویہ ہوتا ہے, اور وہ بھی ہم سے لیں گے کچھ نہ کچھ, ہے نا, وہ بھی ہم سے مانگ کریں گے, ہمیں یہ چاہیے, ہمیں وہ چاہیے. بچپن سے شروع ہو جائے گا مانگ, ہمیں سائیکل چاہیے, ہمیں کھلونے چاہیے, ہمیں یہ چاہیے, ہمیں وہاں وہاں جانا ہے, یہاں جانا ہے, ہمیں پیسہ چاہیے, پاکٹ منی چاہیے, ہے نا. تو پھر اس طرح سے اس کا کوئی انت نہیں ہے, یہ تو سائیکل ہے, یہ چلتا ہی رہے گا, اور ہم کرم جال میں پھنسے رہیں گے. پھر یہاں بتایا گیا ہے کیول بھگوان کرشن کی شرن لینے سے ہی جو ہے اس قرضے سے بچا جا سکتا ہے. اس لیے گیتا میں بھگوان بتا رہے ہیں, سرو دھرمان پرتج مام ایکم شرنم برج آم توام سرو پاپے بھیو موکش شامی مہاشوچا. کرو مت سبھی دھرموں کو تیاگ کر میری شرن میں آؤ, میں تمہیں سبھی پاپوں سے مکت کر دوں گا, یعنی سبھی قرضے سے مکت کر دوں گا. پاپ کا مطلب قرضہ, سبھی قرضوں سے مکت کر دیں گے بھگوان ہمیں, پھر جو ہے کسی کے پرتی ہمارا قرضہ نہیں رہے گا. کتنا اچھا پرپوزل ہے, کتنا اچھا پرستاو ہے شاستروں کے دوارا, بھاگوت کے دوارا, کہ اگر آپ بھگوان کی شرن لیتے ہیں, رادھیکا رمن جی کی شرن لیتے ہیں, جگن ناتھ بلدیو سبھدرا جی کی شرن لے لیتے ہیں, شری شری کرشن بلرام کی, شری شری گورن تائی کی شرن لے لیتے ہیں, تو پھر آپ کو کسی کے پاس جانے کی آوشیکتا نہیں ہے. اس لیے گیتا بھگوان بتا رہے ہیں مام ایکم, کیول میری شرن میں آؤ. یہ نہیں آپ اس دیوتا کے پاس جانا ہے, اس کے پاس جانا ہے, کیا ہوگا کیا ہوگا, کوئی چنتا کی آوشیکتا نہیں ہے, کیول آپ کو بھگوان کی شرن میں رہنا ہے, بس سارا قرضہ چک جاتا ہے, سارے پاپوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے. نہیں تو قرضہ بنا رہے گا, پھر ہم قرضہ چکا بھی نہیں پائیں گے, اور جنم جنمانتر تک جو ہے ہمیں کشٹ بھوگنا پڑے گا. تو اس لیے ہمارے جو شاستر ہیں وہ ہمیں بڑا سرل اپائے دے رہے ہیں. منوش کی بدھی جو اتنی بھرش ہو جاتی ہے کہ وہ سرل راستہ اپنانا ہی چاہتا ہے, وہ کشٹ والا راستہ اپنانا چاہتا ہے. اس کو پتا ہے کہ تھوڑا سا سکھ میں پھونکنے کا پریاس کر رہا ہوں, لیکن آگے کتنا کشٹ ہے, کشٹ ہی کشٹ ہے. वो कष्ट के रास्ते को अपनाने के लिए तैयार है लेकिन भक्ति के मार्ग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। तो वो जीव जो है वो मनुष्य भक्त सौभाग्यशाली है जिनको भगवान की सेवा का यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। और जब हम लोग भक्ति मार्ग में आते हैं इस आंदोलन में जुड़ते हैं तो यहां पर भी हम लोग कुछ ना कुछ लेते ही है कि नहीं, गुरु से लेते हैं, वैष्णवों से लेते हैं, भगवान से भी मांगते हैं, भले बाहर से हम कहें ना धनम ना जनम ना सुंदरीम, लेकिन भीतर से तो इच्छाएं अभी भी है ना, तो प्रार्थनाएं तो होती रहती है साथ साथ, मिश्रित प्रार्थनाएं मिक्स्ड प्रेयर्स हम करते रहते हैं, तो कर्जा तो यहां पर भी ले रहे हैं हम लोग। इसलिए प्रभुपाद से पूछा कि आपके प्रति जो कर्जा है, गुरु के प्रति कर्जा जो है कभी चुकाया नहीं जा सकता, तो आपका कर्जा कैसे चुकाएंगे? भक्तों ने पूछा तो प्रभुपाद ने कहा गुरु के प्रति कर्जा कभी नहीं चुकाया जा सकता है, ये ऐसा कर्जा है जो कभी नहीं चुकाया जा सकता है। यहां बताया गया कि ब्रह्मचर्य का पालन करके, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि उसको कैसा रहना पड़ेगा, आचरण दासमान नीचो गुरु सहोदर सहोदर, उसका आचरण जो है वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि जैसे कोई दास हो, जैसे दास होते हैं ना, दास का मतलब जानते क्या होता है, दास शब्द का अर्थ क्या है? प्राचीन समय में जो है राजाओं के वो दासी दास होते थे, नहीं एक तरह से गुलाम ही होता है दास का मतलब, तो उस प्रकार की भावना हमें रखनी पड़ेगी कि हम तो कितने निकृष्ट है, कितने घिरे हुए हैं, कितने पतित है, ये भावना से गुरु की सेवा करनी होगी। और फिर प्रभुपाद ने कहा कि हाँ अगर शिष्य अगर चाहता है कि वो कर्जे को चुकाना चाहता है तो प्रभुपाद ने कहा देन वी शुड प्रीच विगरेसली, आप उत्साहित होकर प्रचार करें, इस प्रकार से कर्जा चुकाने की जो भावना आप व्यक्त कर सकते हैं, चुकाया नहीं जा सकता तब भी, लेकिन इस प्रकार का भाव व्यक्त कर सकते हैं, हाँ हम और जीवात्माओं को भी कृष्ण की सेवा में लगाएंगे। इसलिए उद्धव जी को भगवान बता रहे हैं दक्षिणा ज्ञान संदेश, क्या है भागवत के एकादश स्कंध में लिखा दक्षिणा ज्ञान संदेश, मतलब इसका अर्थ यह है कि असली दक्षिणा क्या है, कागज के नोट नहीं, जब गुरु से दीक्षा ली तो दक्षिणा क्या है, दक्षिणा देना जरूरी है, एक भाव है व्यक्त करते हैं दक्षिणा देते हैं, लेकिन दक्षिणा क्या है भगवान बता रहे उद्धव जी को, दक्षिणा ज्ञान संदेश, जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया गुरु से उस ज्ञान को आगे देना, इसको कहते हैं असली दक्षिणा, यानी किसी को प्रचार कहते हैं। तो इस प्रकार से ये कर्जा चुकाने का भाव हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, हम हर तरीके से कर्जा ले रहे हैं, यहां पर रोज हमें प्रातःकाल जो है 9 बजे गरम गरम ठाकुर जी का प्रसाद मिलता है ना, और उसके बाद फिर हमें कई प्रकार की सुविधाएं ले रहे हैं इस संस्था में आकर, नहीं रहने को हमें जगह मिलता है, ये बिजली चल रही है ना, लाइट चल रही है, फिर हम ठाकुर जी के दिए हुए वस्त्र पहनते हैं, है कि नहीं, तो कितने प्रकार के कर्जे हमारे ऊपर लग जाएंगे अगर हमारे पास सेवा की भावना नहीं होगी। ठाकुर जी का गाड़ी हमारे पास है, वाहन का उपयोग करते हैं हम लोग, कार्स का उपयोग करते हैं, है ना, हमारे पास गाड़ी है, स्कॉर्पियो हो या मारुति हो या कुछ भी हो, इन सब गाड़ियों का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, चला रहे हैं, फिर हमें लैपटॉप मिलता है, हमें फिर उसके बाद पेन ड्राइव मिलता है, ऑनलाइन फैसिलिटी मिलती है, नेट की फैसिलिटी मिलती है, आईपॉड मिलता है, आई टच मिलता है, मोबाइल फोन्स मिलते हैं, किस लिए? भगवान की सेवा में लगाने के लिए। इसलिए ब्राह्मण दान स्वीकार करता है भगवान की सेवा में लगाने के लिए, अपने जेब भरने के लिए नहीं, अपना जेब भरेंगे तो कर्जा चढ़ जाएगा, फिर से भुगतना पड़ेगा, निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा, अगर भगवान का पैसा खाएंगे तो फिर दंड जरूर मिलेगा, क्योंकि आसान नहीं है, क्योंकि धन का मतलब क्या है, लक्ष्मी जी है, लक्ष्मी जी को आप भोग नहीं सकते तो माया का कार्य करेंगे फिर लक्ष्मी, तो ये कर्जा, ये सब कर्जा हो जाता है। फिर अगर हम लोग पद भ्रष्ट हो जाएंगे या फिर हम लोग इन सुविधाओं का दुरुपयोग करेंगे तो इससे बड़ा कर्जा फिर कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये भगवान की सेवा में लगना था, उसको हमने अपनी सेवा में लगाया, तो इससे बड़ा कर्जा कुछ भी नहीं है। देवताओं के प्रति कर्जा है वो भी काफी गंभीर है, पितरों के प्रति कर्जा वो भी गंभीर है ना, लेकिन ये जो कर्जा है इसमें अगर हमने कुछ गड़बड़ किया तो ये बहुत ही बड़ा कर्जा है, फिर इस कर्जे को कोई नहीं चुका सकता है, उसका कोई उपाय नहीं है। इसलिए हम लोग जो सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं इस संस्था में रहकर, लाभ पूजा प्रतिष्ठा मिल रहा है, यश मिल रहा है, ये कर्जा नहीं है, ये बहुत बड़ा कर्जा है। सारी सुविधाएं हमको मिल रही है। अमेरिकन एम्बेसी के पास जाइए सुबह आप 4 बजे, वहां पे लोग खड़े होते हैं किसके लिए, वीजा के लिए। हमारे भक्त तो पूरे विश्व की यात्रा करते हैं, है कि नहीं? भक्तों को जल्दी मिल जाता है वीजा, भक्त लोग फटाफट यात्रा करते हैं। तो ये सब कौन, किसकी कृपा से? ठाकुर जी की कृपा से, कृष्ण की कृपा से हो रहा है, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हो रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें इतना कुछ दे दिया है, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हम बदले में क्या दे सकते हैं। नहीं, इसे श्रील प्रभुपाद जी के प्रति अगर कर्जा चुकाना है तो उन ग्रंथों का वितरण करना चाहिए। दक्षिणा ज्ञान संदेश, श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ग्रंथों का वितरण करना चाहिए, लोगों तक ये ज्ञान पहुंचे, लोग अंधकार से निकले, अज्ञानता से निकले, और वो भी देवी देवताओं की सेवा छोड़कर भगवान की सेवा में लग जाए। तो ये ज्ञान देना जो है बहुत बड़ा योगदान होगा। तो इस प्रकार हम लोग कर्जे से बच सकते हैं। और कर्जे से सबसे बचने का सबसे आसान तरीका क्या है, जानते हैं क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जैसे ही आप हरि नाम का उच्चारण करते हैं तुरंत कर्जा समाप्त हो जाता है। महामंत्र का आप उच्चारण करिए, समस्त कर्जे समाप्त, है ना? ये संसारिक कर्जे तो लगे रहेंगे, अगर आप बिजनेस में हैं वो आपके अपने प्रारब्ध हैं, तो समस्या उस वातावरण में आपको रहना पड़ता है। तो अगर लोन लिया है तो आपको चुकाना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते मैं हरे कृष्णा बोल रहा हूं तो अब मैं लोन नहीं चुकाऊंगा। लेकिन अगर आप ऐसा निरंतर करेंगे, महामंत्र का जप करेंगे, तो भगवान ऐसी व्यवस्था करेंगे तो आपको सभी प्रकार समस्त प्रकार के कर्जों से छुटकारा दिलाएंगे और आप केवल भगवान की सेवा में लग जाएंगे। ये होगा, हो सकता है समय लग जाए, लेकिन हरि नाम का उच्चारण जो करेगा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, कोई भी कर्जा उसका बचेगा नहीं। एक बार कोई नाम ले लेगा। इससे पहले अजामल की कथा आई, कितना बड़ा कर्जा था उसके पर, लूटपाट किया उसने, अपहरण किया, धन लूटा, चोरी की, डकैती की, और उसके बाद फिर अवैध संबंध स्थापित किया वैश्या के साथ। अजामिल ने कितने सारे पाप कर दिए, है ना? यमदूत भी हैरान हो गए कि कैसे इसको छुड़ा रहे हैं, विश्वदूत कैसे बचा कर ले जा रहे हैं इसको, इसे इतने पाप किए। तो विश्वदूतों ने क्या कहा, इसने यमदूत से बताया कि ये जो अजामिल है इसने भगवान का नाम लिया है, नारायण नाम लिया है। तो ये बता रहे हैं वहां पे भागवत में कि जिस दिन नामकरण हुआ बच्चे का, अजामिल का जो बच्चा हुआ आखिरी 10वां वैश्या से जो संतान उत्पन्न हुई, तो 10वां जो संतान था, जिस दिन वो बच्चा हुआ और जिस दिन नामकरण हुआ, उसी दिन जो है सारे पाप कट गए अजामिल के, सारे पाप उसी दिन कट गए जिस दिन नाम रखा। बल्कि अजामिल तो बच्चे को ही बुला रहा था। इससे पहले क्या हुआ था यह भी बताया जाता है इस कथा में कि अजामिल जिस गांव में रहता था, कनौज कानपुर के पास, तो यहां रहता था अजामिल। और वहां पे बताते इस तरह से नाम पड़ा नारायण कि वहां पे कुछ बच्चे खेल रहे थे उस गांव में, और वहां पहुंचे कुछ संत महात्मा लोग, उन्होंने पूछा यहां कोई रात को ठहरने की जगह है, कोई पंडित का ब्राह्मण का घर है? तो बच्चों ने मजाक करने के लिए उन संतों को बता दिया, हाँ ये अजामिल रहता है, बहुत बड़ा ब्राह्मण है, बहुत बड़ा पंडित था, इसके पास जाइए। तो पीछे से हंसने लगे बच्चे, और इससे लगे बेचारे संत लोग वहां पर। तो बाद में पता चला कि वो तो वैश्या का घर है और वो भी जो है सारे पाप कर चुका है अजामिल। तो फिर अजामिल उस समय कहीं गया होता बाहर, कहीं भी गया था किसी भी कारणवश, लूटपाट करने, चोरी करने, जो भी। तो उस समय ये जो वैश्या थी उससे प्रार्थना की, तब उनके उसके गर्भ में जो है ये बच्चा था जो 10वां पुत्र था। तो फिर उनसे प्रार्थना की कि हमारी प्रार्थना है, हम लोग आपसे कुछ और मांगना नहीं चाहते हैं, हम जा रहे हैं यहां से, लेकिन आपसे अगर हम कुछ, आपको हमें कुछ, आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं, तो ये जो आपका संतान होगी, जो बच्चा होगा, इसका नाम आप नारायण रखें। तो इस तरह से अजामिल को बताया तो अजामिल ने इस बात को स्वीकार किया, और जिस दिन नारायण नाम का उच्चारण किया, पहली बार जब नामकरण हुआ और नारायण नाम का उच्चारण किया अजामिल ने, सारे पाप उसके गड़ गए। बताइए नाम की महिमा कितनी है। यानी कि बताया कि ब्राह्मण का पाप, ब्राह्मण की हत्या का पाप, गौ हत्या का पाप, या कोई अवैध संबंध रखता है, या कोई भी हत्या करता है, या फिर मांस भक्षण किया है, चोरी किया है, यानी कि बड़े बड़े जितने भी पाप किए हैं, अगर वो कृष्ण का नाम लेता है एक बार, सारे पाप उसके कट जाते। बताइए फिर और बात, और बातें क्या, फिर और कर्जा क्या, और तो कोई कर्जा ही नहीं फिर संसार में, तो सारे कर्जों से छुटकारा मिल जाता है केवल अगर कोई हरि नाम का सहारा ले ले। तो इसलिए ये हरि नाम का उच्चारण जो हम कर रहे हैं, ये है सबसे बड़ा यज्ञ। कर्जा चुकाने के लिए यज्ञ करना पड़ता है कि नहीं, तो ये है संकीर्तन यज्ञ। इस संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से जो है हम लोग कर्जा चुका रहे हैं। बहुत सरल तरीका है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भगवान नरसिंह देव बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज को कि जिस कुल में तुम्हारे जैसे महा भागवत जन्म लेते हैं उसकी तो 14 पीढ़ियां तक जाती हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि 14 पीढ़ियां क्यों बोल रहे हैं, 100 पीढ़ियां तक जाती हैं, हंड्रेड ऑफ जनरेशन आर डिलीवर्ड, 100 पीढ़ियां तक जाती। प्रभुपाद जी कह रहे हैं लॉर्ड नरसिंह देव सिंह 14 जनरेशन, वाई 14 जनरेशन, 100 जनरेशन विल बी डिलीवर्ड। तो ये एक शुद्ध भक्त बनने का जो है लाभ है। अगर कोई संन्यास भी ग्रहण कर लेता है, केवल संन्यास लेने मात्र से उसकी 7 पीढ़ियां तक जाती है, 7 जनरेशन आर डिलीवर्ड। तो कहने का मतलब है इसमें कोई नुकसान नहीं है। इसलिए आगे भी श्रील प्रभुपाद जी चर्चा करेंगे तात्पर्य में कि हमारे आंदोलन में कई बार भक्त बनते हैं और कई प्रकार का विरोध होता है। यहां पर जैसे बताया नारद जी को एक तरह से शापित कर रहे हैं, नारद जी को पापी बताया यहां पर प्रजापति दक्ष ने, नहीं प्रजापति दक्ष जो पुत्र थे, 10,000 पुत्र, सिंधु नदी के पास जाके उन्होंने तपस्या की, घोर तपस्या में लगे हुए थे, तो नारद जी देखकर प्रभावित हुए उनकी तपस्या से और उनको भक्त बना दिया, उनको कृष्ण भक्ति का मार्ग बताया, वैराग का मार्ग बताया। उन्होंने कहा नहीं नहीं आपकी गलती मत करना प्रजा बढ़ाने की, आप सब भक्त बनिए। तो 10,000 भक्त बना दिए कुछ ही समय में नारद जी ने। ये नारद जी की शक्ति है। नारद जी जो है बस लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए, तो नारद जी ऐसे साधु है कि लव मात्र भी उनके सानिध्य प्राप्त हो तो सारे के सारे फुल टाइम बन जाएंगे। फिर जितने बेसिस खोल रहे हैं उस जगह कम पड़ जाएगी, इतने भक्त बन जाएंगे कि जगह नहीं होगी कहीं भी, मंदिरों में जगह खत्म हो जाएगी, फिर भारी रहना पड़ेगा शायद, या फिर और बेसिस खोलने पड़ेंगे। तो नारद जी जैसे शक्तिशाली जो प्रचारक हैं, उनके अपने संग से ही लव मात्र सानिध्य से ही भक्त बन जाते हैं। प्रजापति दक्ष को बड़ा दुख हुआ, फिर 1,000 और संतानें उत्पन्न की उन्होंने, और 1,000 संतान फिर से वो लोग तपस्या के लिए निकले थे और उनको भी भक्त बना दिया नारद जी ने, कि आपको भी भक्त बना रहे, चलो आप भी कृष्ण भक्ति करो, कहां आप गृहस्थ आश्रम में जा रहे हो, भक्ति करो। वो भी जो है फिर वैराग का जीवन अपना लिया उन्होंने और वो भक्त बन गए। तो इस तरह से 11,000 संतानें जो है वो कृष्ण भक्त बन गई, फुल टाइम समर्पित हो गए भगवान की सेवा में। 11,000 भक्त, बताइए। प्रजापति दक्ष बहुत क्रोधित हुए, तो ये सब बातें बोली है प्रजापति दक्ष ने, है ना। प्रजापति दक्ष बोल रहे हैं कि ये साक्षात पाप कर्म, नारद जी को कह रहे हैं साक्षात पाप कर्म। तो हमारे प्रचारक भी जब भक्त बनाने जाते हैं, खासकर युवा प्रचारक जब भक्त बनाने जाते हैं, ब्रह्मचारी बनाने जाते हैं या भगवान की सेवा में लगाने जाते हैं, तो उनके माता पिता बड़े क्रोधित होते हैं, बड़े दुखी होते हैं। हमारे एक ही लड़का था, उसको भी ले लिया इन्होंने, और वो फिर वो गालियां देते हैं, झगड़ा करते हैं, मंदिर में आके हंगामा होता है, हमारे बच्चे को वापस करिए, है ना, हमें नहीं बनाना इसको भक्त, हमें नहीं बनाना इसको ब्रह्मचारी, हम चाहते हैं एक गृहस्थ बने, हम चाहते हैं एक इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, हम चाहते हैं कि अमेरिका जाए, खूब पैसा कमाए ताकि हम इंद्र तृप्ति कर सकें। है ये बात सच है, सच बात तो सच है, अच्छा लगे या बुरा लगे, अब ये बात है ही, है ना, ऐसा होता है। और भक्तों के परिवार से भी कोई आना चाहता है तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये जो मोह है, आसक्ति है, बहुत ज्यादा प्रबल है। इतना आसान नहीं है त्यागना। और अगर आपने अगर त्याग दिया तो आप सारे कर्जे से जो है मुक्त हो जाते हैं, है ना, सारे कर्जे से मुक्त हो जाएंगे आप। ये असली जो है सेवा है किसी संतान के प्रति, कि उसको जो है भक्त बनाना। तो पुत्र का अर्थ भी क्या बताया गया है, पू नाम नरक से जो बचाता है, संतान जो बचाती है, पू नाम नरक से बचाती है अपने माता पिता को, ऐसे व्यक्ति को जो है पुत्र कहा गया है, जो भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि प्रजापति दक्ष ने नारद जी को शाप दिया। एक तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं यहां पर, प्रजापति दक्ष ने नारद जी को शाप दिया, और श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसा ही शाप हमें भी मिलता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसा शाप मुझे भी मिलता है, क्योंकि कई जो है युवक जो है वो सब कुछ छोड़कर भगवान की सेवा में लग गए हैं, तो उनके माता पिता भी मुझे शाप देते हैं। श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कि मैं चाहूंगा कि हमारे जो परंपरा में जो आने वाले भक्त हैं उस शाप को परंपरा के माध्यम से स्वीकार करें, और विशेष रूप से जो सन्यासी भक्त हैं वो इसी तरह से शाप को स्वीकार करके जगह जगह जाएं और भक्त बनाएं। क्योंकि नारद जी को क्या शाप दिया प्रजापति दक्ष ने, कि आप एक स्थान में नहीं रुक सकते, तो परंपरा के द्वारा शाप को स्वीकार किया जाए, है ना। तो हम सबको ये शाप लग गया है, हम सबको परंपरा के द्वारा शाप लगा हुआ है, इसलिए भक्त जो है कभी एक जगह रहते नहीं है, एक स्थान में रुक नहीं पाते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, सबको भक्त बनाते रहते हैं, है ना, और सबको कर्जे से छुटकारा दिलाते हैं। तो इस प्रकार ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें इस आंदोलन में शामिल होने का जो है सुअवसर मिला है। और भगवान क्या बता रहे हैं, श्रीमद् भागवत में कृष्ण बता रहे हैं दशम स्कंद में जहां पर गोपियों को कृष्ण बोल रहे हैं, ना पा रहे हम निर्वध्य समुजाम, इसका अर्थ क्या है कि मैं आपके कर्जे को चुका नहीं सकता हूं, भगवान कह रहे हैं गोपियों को, है ना, जो आपने सेवा की है, जो शरणागति आपकी है, जो चिंतन जिस तरह से आप करते हैं, और आप लोग लाज की चिंता नहीं करते हैं, सब कुछ छोड़कर अर्धरात्रि में आ जाते हैं वंशी धनी सुनकर, आपको ये चिंता नहीं कि लोग क्या कहेंगे, बुरा मानेंगे, आप बदनाम हो जाएंगी, उसका कोई चिंता नहीं है आपको। आपको क्या चिंता है कि बस आप मेरे पास आना चाहते हैं। इतना उत्कृष्ट प्रेम जो है गोपियों का है कृष्ण का, तो कृष्ण बोल रहे हैं कि नहीं, आपका कर्जा नहीं चुका सकता। बाकी भक्तों के लिए क्या बोला गीता में भगवान ने, ये यथा माम प्रबद्यन्ते ताम सदैव भजामि अहम्, एज यू सरेंडर आई शैल रिवॉर्ड यू अकॉर्डिंगली, है ना, यानी कि रिवॉर्ड कर देंगे, अगर जितनी शरणागति होगी तो उसके हिसाब से आपको रिवॉर्ड कर देंगे। लेकिन जहां तक गोपियों की बात है, कृष्ण कह रहे मैं रिवॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपने इतनी सेवा की है, आप इतना चिंतन मेरा करते हैं कि मैं कैसे कर्जा चुका पाऊंगा, ये बहुत बड़ा कर्जा है मेरे ऊपर। ऐसे बोल रहे हैं कि आई कैन नॉट रिपे दिस डेट, मैं ये कर्जा चुका नहीं सकता। तो इस प्रकार जब कृष्ण को ऐसा लगता है कि मैं कर्जे में हूं, है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। कृष्ण के लिए तो कोई कर्जा नहीं है, क्यों कर्जा नहीं है कृष्ण के लिए, ये सब कुछ तो उनका ही है, है ना, तो कर्जा किस लिए फिर। लेकिन ये सबसे बड़ा कर्जा क्या होता है, गोपियों का प्रेम, जो प्रेममयी सेवा वो करती हैं गोपियां, वो जो है कर्जा जो है कृष्ण नहीं चुका पाते, ऐसा भाव व्यक्त करते हैं। कृष्ण कहते हैं मैं ये कर्जा नहीं चुका सकता, तो इसलिए ये भाव हमें व्यक्त करना चाहिए। तो इस प्रकार खासकर जो भक्त भी है, जो प्रचार कर रहे हैं, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी कृष्ण को बहुत प्रिय है, उनके प्रति भी भक्त, प्रचारकों के प्रति भी कृष्ण का यही भाव है कि इनके कर्जे को मैं चुका नहीं सकता हूं। कितना कष्ट उठा के, है ना, मान अपमान लाभ पूजा प्रतिष्ठा की चिंता न करके ये भक्त जो है दिन रात एक करके सर्वस्व त्याग कर ये सब कुछ मेरी सेवा में लगने के लिए तैयार है। इसलिए दुर्वासा मुनि को बोला भगवान, जब वो वैकुंठ गए तो उन्होंने बोला कि ये जो सब कुछ छोड़कर, परिवार छोड़कर, समाज छोड़कर मेरी शरण में आ गए हैं, मैं इनको कैसे भूल सकता हूं, है कि नहीं, मैं तो स्वयं स्वतंत्र नहीं हूं, ये भक्त मेरे हृदय में है, मैं इन भक्तों के हृदय में हूं, मैं कैसे इनको भूल सकता हूं। तो भगवान को ऐसा लगता है कि जो भक्त जो प्रचार में लगे हैं, भगवान की सेवा में लगे हैं, प्रचार कर रहे हैं विशेष रूप से और जगह जगह बांट रहे हैं, तो उनके प्रति भी कृष्ण को लगता है कि ये बहुत बड़ा कर्जा है। ये भक्त तो मेरा गुणगान करने के लिए, मेरे बारे में बताने के लिए कहां कहां जाते हैं। श्रीधर स्वामी बता रहे हैं अजामिल के प्रसंग में कि जब एक बार भी कोई नारायण नाम का उच्चारण करता है या कृष्ण का नाम ले लेता है तो उसी समय भगवान क्या सोचते हैं कि ये भक्त जो है मेरा है, मुझे इसकी रक्षा करनी है। एक बार भी कोई कृष्ण का नाम ले लेता है तो भगवान जो है, भगवान की मति उस भक्त में हो जाती है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि हो सकता है कि भक्त की मति ना हो अभी तक कृष्ण में, लेकिन एक बार भी कोई कृष्ण का नाम ले लेता है तो तत्काल ही भगवान की मति उस भक्त में हो जाती है। तो ये नाम की महिमा देखिए, है ना। तो फिर कैसा कर्जा, कोई कर्जा नहीं है। क्या मति हो जाती है, ये देखो, ये इसने मेरा नाम लिया है ना, ये मेरे नामों का प्रचार कर रहा है, हरिनाम फैला रहा है जगह जगह, ग्रंथों का वितरण कर रहा है प्रचार के लिए, क्या क्या नहीं कर रहा है, तो मैं भी कर्जदार हो गया हूं, मेरे ऊपर भी बहुत बड़ा कर्जा है। तो इस तरह से भक्त भगवान जो है अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। जैसे हम देखते हैं रशिया में जब वहां पर भगवद गीता को बैन करने का सोचा गया, वहां के लोगों ने सोचा कि बैन कर दिया जाए, तो फिर कृष्ण की क्या व्यवस्था हुई, इतना हंगामा कर दिया दो दिन के अंदर। नहीं, हम जो 40 साल 50 साल से नहीं कर पाए जब से संस्था चल रही है ना, वो हंगामा जो है कृष्ण ने दो दिन में कर दिया। पार्लियामेंट में हंगामा मच गया, सारे पॉलिटिशियन एक साल बोल रहे हैं, है ना। ऐसा कभी हुआ था आज तक 60 सालों में, है ना, पार्लियामेंट में आज तक भगवदगीता के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई लगातार दो दिन। लगातार दो दिन पार्लियामेंट हाउस में भगवद गीता के ऊपर चर्चा हुई है। ये देखिए भगवान कितने प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं श्रीला प्रभुपाद जी से। प्रभुपाद जी कितने प्रिय हैं कृष्ण को, जहां पता चला कि भगवद गीता बैन करने वाले हैं, बस हालत खराब कर दी उन्होंने। वो एम्बेसडर भी बोला, रशियन एम्बेसडर, हाँ ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये तो सही लोग नहीं है, इस तरह से कर रहे हैं, वो कहे गई। तो इतना जो है मतलब विरोध, इस प्रकार का जो प्रोटेस्ट है, ये तभी हो सकता है जो भगवान की इच्छा हो, है ना। तो कृष्ण को लगा ऐसा कि भैया ये तो प्रभुपाद जी की गीता बैन करने वाले हैं, उनके द्वारा अनुवाद किया गया जो ग्रंथ है गीता है उसको बैन करने वाले हैं, तो मैं हंगामा मचाता हूं। दो दिन के अंदर जो है इतना प्रचार हो गया, है ना, बच्चा बच्चा जाने लग गया, वो भी मैराथन के टाइम, मजा आ गया, है ना। दिसंबर बुक मैराथन के समय गीता का प्रचार की तेजी से हुआ, क्योंकि भगवान भी देख रहे हैं ये भक्त कितना कष्ट उठा के दर दर भटक रहे हैं ठंड में, है ना। रशिया में इतनी ठंड पड़ती है, वहां पे -15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मॉस्को में है, साइबेरिया, जहां पर साइबेरिया है वहां -30 डिग्री सेल्सियस है, और ऐसे में भक्त प्रचार कर रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, और ये दुष्ट लोग जो है इसको बैन करना चाह रहे हैं। बस आप देखिए कितना प्रचार होता है। तो ऐसे कभी कभी भगवान जो है ठाकुर जी कृपा करते हैं, विशेष कृपा करते हैं भक्तों का प्रयास देखकर। तो हम प्रयास ही अगर करेंगे प्रचार के लिए तो सारा कर्जा हमारा खत्म हो जाएगा, और ऐसे भक्तों का स्वयं भगवान गुणगान करते हैं। तो इसलिए हम इन बातों को बड़ी गंभीरता से लें, है ना। हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अगर हम सेवा का भाव नहीं रखेंगे, हम ये सोचेंगे कि नहीं नहीं हम आंदोलन में तो आ गए हैं लेकिन हम कुछ करेंगे नहीं, हम जप नहीं करेंगे, हम ध्यानपूर्वक जप नहीं करेंगे, तो भक्तों कैसे उतार सकते हैं कर्जा। प्रातः काल जल्दी उठ के ब्राह्म मुहूर्त के समय भगवान का दर्शन करके भक्तों के साथ बैठ के जप करें, या घर पे है तो घर पे जप करें आप, घर पे भी उठे, घर में जो रह रहे हैं उनके पास लाइसेंस नहीं है कि आप, क्योंकि घर में है तो सुबह सो रहे हैं आप, है ना। घर में हो या मंदिर में हो, कहीं भी हो, जंगल में हो, प्रातः काल जल्दी उठना जरूरी है। ब्राह्म मुहूर्त के समय उठे, भगवान का दर्शन करें, और या घर में है तो घर में बैठ के जप करें, रोज भागवत पढ़े, भागवत सुने। तो यहां पर जो कार्यक्रम है वो आप घर पे भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक गंभीर भक्त बनकर हम लोग जो है कर्जा चुकाने का प्रयास कर सकते हैं, अपने जीवन को सुधार के। खुद को सबसे बड़ा प्रचार क्या है, सबसे बड़ा प्रचार है स्वयं को बचाना, सबसे बड़ा प्रचार है स्वयं को कृष्ण भावना भावित बनाना। इसलिए एक भक्त जो है बहुत प्रचार कर रहा था, बहुत ग्रंथ बांट रहा था, सुबह जाता था और रात को आता था, उसके बाद पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता था, रात को लेट आता था, सोता था। तो हमने उनको बताया कि देखो आप बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए आप ही न रहे तो कौन ग्रंथ बांटेगा? आप ही नहीं रहोगे तो ग्रंथ कौन बांटेगा? क्योंकि ग्रंथ जो है भक्तों के माध्यम से वितरित होते हैं। तो इसलिए फिर वो बड़े गंभीरता से बात को लिया, फिर उसने अपने सुधारा उसने अपने आप। तो कहने का अर्थ यह है कि हम सबको जो है अगर इस कर्जे से मुक्त होना है तो हम सबको अपने आप को गंभीर बनाना पड़ेगा, कृष्ण भावना भावित बनाना पड़ेगा, अपनी साधना ठीक रखनी होगी, सेवाएं ठीक रखनी होगी, भक्तों के संग में रहना होगा। इस तरह से हमेशा हम कर्जे से बचे रहेंगे। तो ये भाव हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है? वैसे पूछ लीजिए। प्रभु जी ने पूछा है कि हम संतुलन कैसे बनाए रखें, अपना स्वास्थ्य भी है, साधना भी है, सेवाएं भी है, और जो गृहस्थ है उनके पास घर की जिम्मेदारी भी है। सिचुएशन सबका अलग अलग है, देखिए है ना। जैसे ब्रह्मचारी का लाइफ है गृहस्थों का वैसा लाइफ नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन देखिए बेसिक जो चीजें हैं उसको तो मीट करना पड़ेगा, है कि आप गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, नहाना तो पड़ेगा ही आपको। आप ये नहीं बोल सकते हम गृहस्थ हम नहाएंगे नहीं, है ना। तो बेसिक रिक्वायरमेंट तो आपको मीट करने पड़ेंगे। दो टाइम प्रसाद, अगर तीन टाइम लेते हैं तीन टाइम लेते हैं, दो टाइम लेते हैं प्रसाद, तो प्रसाद तो लेना ही पड़ेगा। कुछ ऐसे बेसिक रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल करना ही पड़ेगा आपको। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसी तरह से हमें अपनी साधना का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपने जप का ध्यान रखना पड़ेगा, अन्य सेवाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन बैलेंस नहीं होगा तो फिर हमारा जो है स्पिरिचुअल लाइफ खतरे में होगा, है कि नहीं। हम प्रचार के नाम पर जो है खुद को धोखा नहीं दे सकते। प्रचार के नाम पे हम अपने आचरण को जो है दांव पे नहीं लगा सकते। इसलिए अपनी साधना, अपने जो स्वाध्याय है, शास्त्रों का अध्ययन है, इसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। संतुलन बनाए रखने का मतलब यह है कि हम लोग, हमने एक बार महाराज से पूछा था, हमने गुरु महाराज से, कि महाराज सुबह की साधना जरूरी है या सेवाएं जरूरी है? तो महाराज ने बोला 80% जो है वो सुबह का कार्यक्रम है, सेवाएं अगर है बहुत सारी सेवाएं हैं, लेकिन 80% जो स्पिरिचुअल लाइफ का वो सुबह का प्रोग्राम, मॉर्निंग प्रोग्राम है। लेकिन होता क्या, हम 20% सुबह के प्रोग्राम में देते हैं और 80% सेवा में लगाते हैं, या उसमें भी लड़खड़ाते हैं। 80% जब सेवा साधना में ध्यान देंगे तो अपने आप फिर आपकी सेवाएं भी और अच्छी होती जाएंगी दिन भर दिन। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने साधना का ध्यान रखें प्रातःकालीन कार्य, उसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। संतुलन का मतलब यह है कि रात को देरी से ना जागना, है ना। अगर कोई प्रोग्राम्स हो रहे हैं हाउस प्रोग्राम, तो उसको बैलेंस किया जाए। वो बोलिए जी हाउस प्रोग्राम को करवाना है तो 10 बजे तक खत्म होना चाहिए। बॉम्बे में या कहीं हमें सुना था कि वहां उन्होंने सिस्टम बना दिया है कि सब सारे प्रोग्राम 10 बजे तक खत्म हो जाने चाहिए। आपको करना करो, नहीं तो मत करो। क्योंकि आपका अपना स्पिरिचुअल लाइफ जरूरी है, आप खुद ही नहीं रहेंगे फिर तो फायदा क्या। अगर 12 बजे तक जागेंगे और फिर आप सोचें कि 4 बजे भी उठ जाएंगे, कब तक होगा? अभी तो यार शरीर के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, हेल्थ का अलग ही सेशन हो सकता है। लेकिन यहां पे तो इतना बताना चाहेंगे कि अगर आपने शरीर के साथ खिलवाड़ किया तो ये शरीर जो है आपको जवाब दे देगा। फिर ना सेवा होगी, ना साधना होगी, कुछ भी नहीं होगा। ना आप भौतिक कार्य कर पाएंगे, ना आध्यात्मिक कार्य कर पाएंगे। मुंह बंद हो जाएगा, कान खराब हो जाएगा, कुछ सुनाई नहीं देगा, कुछ बोल नहीं पाएंगे, तो फिर क्या साधना करेंगे बताइए? अगर आप सुन नहीं पाए, अगर बोल नहीं पाए, तो साधना बंद आपकी। मेन तो साधना जो होती है दो इंद्रियों से होती है, एक बोलना और सुनना, और यही दोनों अगर बंद होने लग जाए तो फिर क्या साधना करेंगे आप? इसलिए जो है बेसिकली हमें सक्सेस पे इतना ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, यानी रिजल्ट्स पे इतना ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए कि हम अपना ही हेल्थ ही खराब कर लें और फिर उसके बाद जो है सुबह उठने लायक ना हो। सुबह उठा नहीं जा रहा है, रात के 12 बजे आए हैं, सुबह फिर 3:30 बजे उठ रहे हैं, फिर सोच रहे हैं कि 9 बजे तक बैठ जाएंगे, फिर उसके बाद सेवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो ये चलेगा नहीं, ऐसी गाड़ी चलती नहीं है। तो हाँ, स्पिरिचुअली हम सेफ है ना, मेडिकली सेफ है। तो इसलिए बैलेंस करने का मतलब ये है कि हमको रात के 10 बजे तक सारे कार्यक्रम समाप्त करने चाहिए, और 4 बजे तक उठा जाए तो 6 घंटे हो जाते हैं। तो 6 घंटा रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए उससे, और रात का जो रेस्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दिन का रेस्ट जो है, दिन में तो एक्चुअली सोना ही जो है बहुत खतरनाक है देखा जाए तो, लेकिन अगर मान लीजिए रेस्ट करना पड़ जाए तो ज्यादा नहीं, उसको कहते हैं पावर नैप कहते हैं, आधा घंटा पौना घंटा बस, दैट्स ऑल। लेकिन अगर रात को सोएंगे हम लोग लेट तो दोपहर में सोना पड़ेगा 2-2.5 घंटे, तो पूरा दिन खराब, क्या फायदा हुआ, आपका स्वास्थ्य भी खराब। सुबह जल्दी उठेंगे तो सबसे ज्यादा जो है खराब आपका लीवर होगा। लीवर खराब होने के कई कारण बताए गए, ये भागवत का विषय नहीं है, लेकिन इसका कनेक्शन हमारी साधना से, सेवा से है, इसलिए यह जानकारी प्राप्त होना जरूरी है। लीवर खराब होता है जब हम लेट सोते हैं और जल्दी उठते हैं। लीवर खराब होता है जब प्रसाद के बीच में बहुत लंबा गैप होता है, 5-5, 6-6 घंटे का गैप, और बीच में कुछ खा नहीं रहे, है ना, तब आपका लीवर खराब हो सकता है। और अधिक वजन उठाने से भी लीवर पर जोर पड़ता है। कच्चा खाते हैं अगर, मान लीजिए आप चपाती बनाई और कच्चा आटा उसमें, तो उससे भी लीवर खराब होता है। तो ये सब लीवर खराब होने के कारण है, और ये सब हम करते हैं। और जहां लीवर खराब हो गया वहां समझ लीजिए आपके शरीर का इंजन खराब। लीवर शरीर का सबसे पावरफुल इंजन है, और लीवर आपका खराब हो गया तो आंखें खराब होंगी, दिमाग खराब होगा, रात को नींद नहीं आएगी, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा, हार्ट को इफेक्ट करता है। लीवर खराब हो गया तो हार्ट का सबसे नजदीक हार्ट है लीवर के, तो सबसे पहले वो जो है खराब करेगा हार्ट को, और उसके बाद खून गर्म करता है जिससे आपके जो है ज्वाइंट्स में जो ग्रीस है वो सब पिघलने लग जाते हैं, और ये गर्म खून जब दिमाग में जाएगा तो फिर आपकी नींद उड़ जाएगी, स्ट्रेस बन जाएगा आपके बॉडी में, टेंशन हो जाएगा आपको, रात को नींद खराब होगी आपकी, बालों में खुश्की आ जाएगी आपकी, और आंखें खराब हो जाएंगी, और क्या चाहिए बताइए आपको। तो इसलिए अभी आज डराने के लिए हम इस सेशन नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर अलग से आपसे चर्चा करेंगे हम लोग, है ना। अब इतना मतलब गंभीरता से लीजिएगा इसको बहुत, है ना। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, अच्छा स्वास्थ्य होगा तो भक्ति कर पाएंगे, अच्छा स्वास्थ्य होगा तो भगवान का दर्शन कर पाएंगे, अच्छा स्वास्थ्य होगा तो प्रचार कर पाएंगे। हेल्थ इज वेल्थ, अभी भी हेल्थ इज वेल्थ ही है। इसे भागवत में लिखा है प्रथम स्कंद में, भागवत में स्वयं श्रील सूर गोस्वामी बोल रहे हैं, वहां पर क्या बोल रहे हैं कि अगर कुछ कामना करनी चाहिए इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके तो है अच्छा स्वास्थ्य। भागवत में लिखा है ये बात, और भगवान गीता में बता रहे हैं अगर आहार और निद्रा संतुलित नहीं है आपका तो आप कभी योगी नहीं बन सकते। बोला कि नहीं बोला? तो भगवान गीता में हेल्थ के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं बताइए? क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है, एक साधक के लिए जरूरी है, है ना। तो हम लोग जो है भावुकता में जो है आध्यात्मिक जीवन ना बिताएं, लेट अस बी बिकम प्रैक्टिकल, और इस तरह से अपने संतुलित जीवन को अगर हम चलाएंगे तो फिर हम भक्ति में भी आगे बढ़ेंगे और दूसरों लोगों का भी कल्याण कर पाए। और खुद ही हम खोखले हैं, खुद ही हमसे चला नहीं जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है, तो दूसरे का क्या उद्धार करेंगे, दूसरे की क्या काउंसलिंग करेंगे, है कि नहीं? खुद ही आपकी आंतें काम नहीं कर रही हैं और दिखाई नहीं दे रहा है, और आप दूसरे को काउंसलिंग कर रहे हो, बताइए वो क्या सोचेगा? अच्छा प्रभु जी मेरी काउंसलिंग कर रहे हैं, शायद मेरा भी हाल ऐसे ही होगा, क्योंकि मुझे तो इनके पचनों में चलना है, रात को लेट सो के सुबह जल्दी उठना है ना। तो इस तरह से मैं भी इस तरह से बन जाऊंगा, है ना। तो लोग डर जाते हैं, इसलिए फिर क्या होता है कि आश्रम में अगर भक्त आ भी गए वो गलत स्वास्थ्य के कारण, बुरे स्वास्थ्य के कारण, फिर वो टिकते नहीं। ऐसे कई हमने भक्त देखे हैं हमारे आंदोलन में, केवल स्वास्थ्य खराब होने के कारण जो है उन्होंने आंदोलन छोड़ा है, यस। और उनका स्वास्थ्य का क्योंकि ध्यान ही रखा गया, अच्छे अच्छे भक्त जो है हमारे आंदोलन से चले गए, उनको उन्होंने शरीर तक छोड़ दिया क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, इसलिए जो परफेक्शन अटेंड करना था वो परफेक्शन भी नहीं अटेंड कर पाए, बीमार होकर शरीर छोड़ दिया उन्होंने। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम खुद जिम्मेदार हैं, किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। अगर हम बीमार हो जाते हैं हम नहीं बोल सकते हैं गुरु के वजह से हुआ ये, गुरु ने ये तो नहीं बोला कि स्वास्थ्य का ध्यान मत रखो। तो इसलिए हमको लाइफ को बड़ा बैलेंस करके चलना है ताकि हम खुद को भी बचा सकें और दूसरों को बचा पाएं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की श्रील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंद जी।